हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुबह के वक्त निमानी हाउस में चहल पहल थी, क्योंकि आज उनकी बहुओं की पहली नवरात्रि थी और गुजरात में नवरात्रि को बहुत स्पेशल माना जाता है, इसलिए वे सुबह से ही काफ़ी तैयारी में लगे हुए थे। मंदिर से अंबे माँ की आरती की आवाज़ आ रही थी और ये आरती माधवी गा रही थी। सब लोग उनके पीछे हाथ जोड़ खड़े थे। आरती के बाद माधवी, राधिका और निवेदिता ने तीनों बहुओं को नई लाल रंग की चुनरी ओढ़ाई। ये उनकी एक छोटी सी रस्म थी जो उनके परिवार में सदियों से हो रही थी। विहा तो उस चुनरी को देखकर बहुत खुश हो चुकी थी। वह इशारों इशारों में वेदांत को वो दिखाते हुए पूछ रही थी कि उस पर कैसी लग रही है। ये देखकर माधवी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बहू, तुम्हें मैंने पहले दिन भी कहा था, मेरे सामने भगवान का अपमान मत किया करो। अगर भगवान से जुड़ी कोई भी रस्म चल रही है तो उसके बीच तुम अपने पति से इशारों इशारों में क्यों बातें करती हो? शायद तुम अपनी पहले दिन वाली धमकी भूल चुकी हो। विहा ने मुंह बनाते हुए कहा, ताई जी, विहा सहगल कुछ नहीं भूलती है, उसे सब याद रहता है। मैं तो बस अपने पति से ये पूछ रही हूँ कि मुझ पर ये लाल चुनरी कैसी लग रही है। वैसे मुझे आपका पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो अपना राजस्थानी पहनावा ही अच्छा लगता है और शायद मेरे ऊपर वही सुंदर भी लगता है। बस यही डाउट है मेरे दिमाग में, तो उसको क्लियर करने के लिए इशारों इशारों में ही मैं अपने पति से बात कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आपके भगवान का और ज़्यादा अपमान हो जाएगा। वेदांत ने अफसोस से अपना सिर पीट लिया और फिर जल्दी से उनके पास जाते हुए बोला, ताई जी, ये थोड़ी बच्चों जैसी हरकतें कर देती है कभी कभार, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप आरती पूरी करिए, उसके बाद हमें शॉपिंग पर भी जाना है और भी बहुत सारे काम हैं। माधवी ने मुंह बनाते हुए विहा को देखा और फिर आरती पूरी होने के बाद सबने अपना अपना काम संभाला, जिसकी प्लानिंग वो कुछ दिनों से कर रहे थे। रात को एक छोटी सी गरबा नाइट प्लान करनी थी, जिसके लिए अनाही रूहान के साथ मिलकर गार्डन एरिया को सजाने में लगी थी। तो वहीं राव्या और विहा वेदांत और अनंत के साथ शॉपिंग करने गई थीं। अनाही ने अपने लिए भी उन्हीं से कपड़े मंगवा लिए थे, क्योंकि वह घर रहकर सारा काम संभालना चाहती थी। उसे पता था राव्या और विहा में से कोई काम नहीं कर सकता है। साथ ही साथ तीनों ने आज नवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ था। अनाही, जो एक सर्वेंट को पेड़ पर लाइट्स लगाने को बोल रही थी, उसका चेहरा धूप की तरफ था। रोहान जल्दी से उसके सामने जाकर अपना हाथ सूरज की तरफ करते हुए अनाही को धूप से बचाने की कोशिश कर रहा था और उसकी इन नादान कोशिशों से तंग आकर अनाही ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, रोहान जी, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना, आप डीजे वाले को कॉन्टैक्ट करिए, यहाँ पर स्टेज भी लगवाना है हमें, सिर्फ डेकोरेशन से काम नहीं चलने वाला है, और आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं? इतना बोलकर उसने रोहान का हाथ नीचे किया, जो कब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बने खड़ा था। रोहान ने जल्दी से कहा, मैडम जी, आज आपका उपवास है, उसके बाद आप धूप में काम कर रही हो, आज तो आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, बस रेस्ट करना चाहिए। मैंने सुना है वह उपवास वाले दिन जूस पी सकते हैं, फल फ्रूट भी खा सकते हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। उसने गार्डन में पेड़ के नीचे लगे बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाही ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रोहान जी, ये सब करने का वक्त नहीं है, फिलहाल आप जाइए, मैंने जो कहा है वो काम करिए, और उसके बाद सबको इनविटेशन कार्ड भी आप ही को भेजने हैं, और मैं यहाँ मोहल्ले में कौन कौन रहता है उनके नाम मैं नहीं जानती हूँ, तो आपको उन कार्ड पर उनके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद आप किसी को बोलकर वो कार्ड उनके घर तक पहुँचा देना, यहाँ डेकोरेशन का मैं देखती हूँ। इतना बोलकर उसने धक्का देते हुए रूहान को गार्डन एरिया से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। रूहान ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह अनाही के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्लीज़ मैडम जी, मुझे आपके पास ही रहना है, मैं सारे कार्ड यहाँ लेकर आ सकता हूँ, मैं यहाँ बैठकर नाम लिख लूँगा और साथ में आपके लिए जूस भी लेकर आऊँगा। अनाही ने अफसोस से ना में गर्दन हिला दी। वह रूहान की जिद के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, पर दोपहर से पहले सारे इनविटेशन कार्ड इस मोहल्ले के घर घर तक पहुंच जाने चाहिए। रूहान ने अनाही की तरफ सैल्यूट करते हुए कहा, मैडम जी, आपने बस ऑर्डर दिया है, दोपहर तक मैं मोहल्ला क्या नासा तक भी इनविटेशन कार्ड पहुंचा सकता हूं, बस शर्त ये है कि ऑर्डर आपका दिया हुआ होना चाहिए। अनाही ने आंखें बड़ी करके रूहान को देखा और रूहान हल्का सा मुस्कुराते हुए लगभग दौड़ते हुए गार्डन से मेंशन की तरफ आ गया। अनाही कुछ पल रूहान की हरकत पर मन ही मन मुस्कुराती रही और उसके बाद वापस अपने काम में लग गई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सबसे फेमस मॉल में वेदांत और अनंत वेटिंग एरिया में सोफे पर बैठे थे। विहा और राव्या दोनों अंदर अपने लिए लहंगा डिसाइड कर रही थीं। अनंत ने वेदांत को धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता विहा कि मॉम के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं बनती है? ऐसा लगता है वो दोनों पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं एक दूसरे से। वेदांत ने हंसते हुए कहा, तूने उसका असली रूप देखा नहीं है और ताई जी हमेशा उसी की टांग खींचती रहती हैं। ऊपर से वो थोड़ी सी साइको टाइप की है। ऐसा लगता है बचपन में कहीं से गिरविर गई थी और उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। वह दिल से किसी से नफरत नहीं करती है, बस उसकी कैंची जैसी जुबान उसकी बस की नहीं है। जो दिल में आता है उसी वक्त बोल देती है। अनंत ने हंसते हुए कहा, उसके इस अनस्टॉपेबल बिहेवियर की वजह से तुम्हारी भी लंका लग सकती है। विहा हाथों में कुरकुरे लिए अनंत और वेदांत के पास आई और फिर वेदांत के बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं तो थक गई थी, कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है। ये दुकान अच्छी नहीं है, मुझे लगता है आप खर्चा कम करवाने की कोशिश में हमें इस मॉल में लेकर आए हैं। वेदांत ने उसका सिर अपने कंधे से हटाया और फिर उसके हाथ से कुरकुरे की थैली छीनते हुए बोला, क्या तुम यहाँ कुरकुरे खाने आई हो? पहले शॉपिंग कर लो यार, घर जाकर और भी काम करने हैं। तुम्हें पता नहीं है अनाही ने कितनी सख्ती से कहा था कि जल्दी वापस आना है। विहा ने गुस्से में वेदांत को देखते हुए कहा, आपकी वो दोस्त बहुत जालिम है। एक तो इतना मुश्किल काम दे दिया है, ऊपर से बोल दिया कि जल्दी आना है और मेरे कुरकुरे वापस करिए। ये तो मेरी फेवरेट चीज है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर आपने मुझे ये पैकेट वापस नहीं दिया तो मैं यहाँ शॉपिंग भी नहीं करूँगी। अनंत को उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर अचानक ही उसकी हंसी रुक चुकी थी जब उसने सामने राव्या को देखा, जो अपने लहंगे को संभालते हुए उन तीनों की तरफ आ रही थी। उसने गोल्डन कलर का लहंगा चोली पहना था, जिस पर एक ऑफ व्हाइट रंग का हैवी दुपट्टा था। वह अपने दुपट्टे को संभालते हुए वहां आई और फिर उन तीनों की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुलाते हुए बोली, ये कैसा लग रहा है? सेल्स गर्ल ने बोला कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। राव्या वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विहा ने जल्दी से सोफे से उठते हुए कहा, वाह राव्या दी, आप क्या कमाल लग रही हो। बस ये समझ लो, गरबा नाइट में सब लोग बस आप ही को देखने वाले हैं। निमानी परिवार की बड़ी बहू सबसे खूबसूरत है, बस यही चर्चा होने वाली है।
वेदांत ने भी जल्दी से कहा, हाँ सच में ये रंग बहुत सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर। प्लीज अब इस मंद बुद्धि को भी लेकर जाओ, इसके लिए भी कुछ अच्छा सेलेक्ट करना। तुम्हारी चॉइस देखकर लग रहा है तुम्हें काफी नॉलेज है कपड़ों का। इसे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, बंदरिया है एक नंबर की। बस खाने के बारे में सब कुछ पता है इसको। ये सुनकर विहा वापस वेदांत की तरफ मुड़ी और उनकी कभी ना खत्म होने वाली बहस शुरू हो गई। वहीं राव्या की नजरें अब अनंत की तरफ थीं, जिसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था।